2002-03 में आपका फर्स्ट तारुफ मुझे जिसने करवाया ना, ये था कि अब्दुल हबीब भाई के एक कान पे एक रिसीवर होता है, दूसरे कान पे दूसरा होता है, और एक जो है ना वो होल्ड पे होता है। मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं?
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत का हिस्सा भी है, और उस वक्त ये कारोबार की मेरी मसरूफियात थी। मेरे कारोबार का एक मॉड्यूल ऐसा था जो टेलीफोन पर ही होता था, और मुझे हर वक्त 2-3 फोन्स पे रहना पड़ता था, तो वो बहुत बहुत हेक्टिक लाइफ थी और बड़ी बिजी इस हवाले से कारोबार के लिहाज से थी।
क्या ऐसे बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने आप से करूं कि मैं अपने आप को तो क्रॉस चेक करूं, क्योंकि हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होगा कि उसको कोई ऐसा मेंटोर और ऐसा समझदार आदमी मिल भी जाए। कैसे अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें?
आम लोगों के लिए बात करें कि दो चीजें होती हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूं लेकिन मेरे आसपास वाले खुश भी हैं कि नहीं। कुछ लोग किसी न किसी वजह से समहाउ तरक्की तो कर जाते हैं, मगर इतने लोगों को तोड़ चुके होते हैं, किसी की टांग तोड़ी, किसी का पैर तोड़ा, किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी को बाहर निकाला और आप पहुंच गए ऊपर, तो ये पायदार तरक्की नहीं है। सारे लोग आपसे नाराज हैं, और अल्लाह ना करे जब आप फिर नीचे आए तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं हो। जो लोग चाहते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से इंजॉय करें, अपने बिजनेस तो है लेकिन वो चाहते हैं ट्रैवल भी करें, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो फैमिली को टाइम
हमारे
वो
पास
टाइम नहीं लेगा, तो कहते हैं हमें बैठना पड़ता है बिजनेस पे। तो उसकी वजह ये होती है, बाज लोगों को अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा नहीं होता, और जब अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा नहीं तो उनको हर वक्त खुद प्रेजेंस, वो समझते हैं शटर भी मैं खोलूं और बंद भी मैं करूं। तो मुझे एक बात बताएं, फिर आपने जो पैसे कमाए उसको एंजॉय कब करेंगे? आप ट्रैवल कब करेंगे? मक्के मदीने कब जाएंगे?
जो शख्स किसी पे भरोसा नहीं कर पाता और सारे काम खुद ही करने, तो ऐसा है कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया और
हाँ
खुद चौकीदार बन के बैठ गया।
बिल्कुल है, 100% सही मिसाल थी।
सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर लॉन्ग ड्राइव की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है, और आज हमारे एपिसोड में होंगे हाजी अब्दुल हबीब भाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल को घर से रिसीव करते हैं और फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर आज जाना है, बहुत सारी बातें होंगी हमारे साथ।
मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है। कहाँ ले जाना है आपने हमें?
आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं।
अच्छा।
और कराची से बाहर जा रहे हैं
चले,
और इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें होंगी। नाजरीन, इस वक्त अब्दुल हबीब भाई को रिसीव किया, इसी बिल्डिंग में रिहाइश है, तो इंशाल्लाह अभी हम गाड़ी में बैठेंगे और फिर
कुछ और दोस्त
हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हैं।
रुकना, मेरा जाना, मेरा आना।
नाजरीन, इस वक्त हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हमारा सफर जारी है। थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि आज का जो हमारा सफर है वो कराची के एक अतराफ के इलाके में दाबीजी और गारो की तरफ इंशाल्लाह हमारा ट्रेवल होगा। ऑन द वे हम कोशिश करेंगे, मदरसतुल मदीना है वहाँ पर, कुछ इस्लामी भाई से भी मुलाकात का सिलसिला रहेगा। ऑलमोस्ट जो है वो दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है और हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है। कैसे हैं आप? खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह।
आपके साथ लास्ट कब लॉन्ग ड्राइव किए, याद है?
तो मेरा ख्याल शायद हम साउथ अफ्रीका में हमने शायद ट्रेवल किया था, तो वहाँ
साउथ में शॉर्ट ड्राइव थी,
अच्छा
मशवरे थे, और लेकिन मुझे जो याद है हैदराबाद का सफ़र हुआ था ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बैक। आपके एक दो बयान थे तो हम कराची से ही गए थे। मुझे वो सफ़र यूं याद है कि उसको अगर मैं एक टाइटल दूं तो सफ़र का नाम होगा चल सो चल।
एक नया सिलसिला बन सकता है
चल सो चल। अच्छा, आपके साथ पहला लंबा सफ़र था वैसे तो माशाल्लाह 2002-03 से मुख्तलिफ मशवरों में और सिलसिला रहता है, तो वो चल सो चल यूँ था कि एक जगह बयान है, बस बयान एंड हुआ है तो मुलाकात है, मुलाकात अभी इख्तिताम पजीर होने को थी तो खाना है, खाने का आखिरी लुकमा था तो आगे का सफर है, अभी सफर पर पहुंचे तो दूसरा बयान है। फारूक जिलानी भाई हमारे होस्ट थे उस वक्त रुकने शुरा भी नहीं थे, तो उनके घर पर हमारा फर्स्ट जो स्टे था वहाँ था।
ऐसा ही जुमेरात का सफर मैं अभी करके आया हूँ, यानी आज हम इतवार को जा रहे हैं ना, तो लास्ट जुमेरात जो है हम हैदराबाद में ही थे। नॉर्मली अब मैं हैदराबाद के सफर पे ये करता हूँ कि पहले हम क्या करते थे कि जोहर के बाद यहाँ से निकलते थे, जुमेरात जब इज्तिमा में जाना हो तो वहाँ पहुँचे, मगरिब में कुछ चाय वगैरह पी और इज्तिमा किया, फिर इज्तिमा के बाद हैदराबाद का एक पूरा एक माहौल है कि वो रात भर जागते हैं, तो रात भर कुछ मुलाकातें करते करते रात 2-3 बजे वापसी होती। इस बार थोड़ा सा हमने हट के जदवल यूँ किया कि मैं बुध की रात को ही यहाँ से
अच्छा
चला गया। अच्छा, जाने का प्लान बुध की रात था, तो चल सो चल वाली आपने बात की, तो मैं 3 दिन के सफ़र पे था, इस्लामाबाद और लाहौर। मेरी फ़्लाइट लाहौर से कराची आनी थी रात तकरीबन 11 बजे, और उसके बाद मैंने प्लान ये किया था कि रात 12 बजे हैदराबाद चला जाऊंगा और वहीं जाके आराम करूँ। लेकिन वो जदवल 3 दिन का इतना टायरिंग था कि मैं जब एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो बस हो गई थी मेरी, तो जो साथ चलने वाले थे मैंने कहा ऐसा करते हैं रात 11 बजे नहीं, हम फजर पढ़ के जाते हैं। तो फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ के सफ़र शुरू किया जुमेरात को, और वहाँ जाके कुछ आराम किया, और जहर के बाद से फिर हमने जदवल वहाँ शुरू किया, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बयान हुआ, प्रेस क्लब में बयान हुआ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुलाकातें हुई, और उसके बाद हफ्तावार इज्तिमा हुआ। हफ्तावार इज्तिमा के बाद हमने इज्तिमा के सारे शुरका से मुलाकात की, और फिर एक खूबसूरत बात ये हुई कि 28 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो हैदराबाद से एक काफ़िले की सूरत में मुख्तलिफ तरीके से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कराची आई। हमने एक दिन राह खुदा में उन बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को तैयार किया, हमारी मजलिस ताजरान ने, और फिर जिस मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाता हूँ तो फैज़ान गौस पाक में वो ठहरे थे, तो फिर जुमा पढ़ाने वापस मैं गया तो उन सबसे फिर वहाँ मुलाकात हुई, और उनकी फिर निगरानी शुरा से शाम को मुलाकात हुई। तो इट्स वेरी यूनिक इस बार का टूर था, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको इस अंदाज से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये इत्तेफाकी है आपकी लाइफ में या इख्तियारी है क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ माशाल्लाह बहुत सारे इस्लाम भाइयों के साथ इंटरेक्शन जा रहे रहता है। अच्छा, एक और मज़े की बात आपसे शेयर करूँ, नाज़रीन के लिए भी दिलचस्प होगा। 2002-03 में आपका फर्स्ट तारुफ मुझे जिसने करवाया ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मदनी थे, इंतकाल हो गया उनका, तो वो किसी काम से आपके पुराने ऑफिस में, तो आपका फर्स्ट तारुफ ये था कि अब्दुल हबीब भाई के एक कान पे एक रिसीवर होता है, दूसरे कान पे दूसरा होता है, और एक जो है ना वो होल्ड पे होता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो क्या ये इख्तियारी है, इत्तेफाकी है या क्या है? और मैं ये इसलिए सवाल भी कर रहा हूँ कि लाइफ है, जाहिर है कि उसके अंदर आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो क्या मल्टीटास्किंग आपकी इख्तियारी है या इत्तेफाकी है? मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत का हिस्सा भी है, और यानी ये जो आपने वक्त बताया ना 2002-03 का, उस वक्त ये कारोबार की मेरी मसरूफियात थी। मेरे कारोबार का एक मॉड्यूल ऐसा था जो टेलीफोन पर ही होता था, और मुझे हर वक्त 2-3 फोन्स पे रहना पड़ता था, तो वो बहुत बहुत हेक्टिक लाइफ थी और बड़ी बिजी इस हवाले से कारोबार के लिहाज से थी। अच्छा, अब दावत इस्लामी में जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक के बाद एक जिम्मेदारी मिलती चली जाएगी, और अब जाहिर है कि आपके पास अगर 17 मजालिस हों, अच्छा एक तो 17 मजालिस को चले जो भी उनके मसाइल हैं आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, मगर फिर एक पब्लिक अपेयरेंस जब आपकी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो पब्लिक की तरफ से भी एक इतना प्रेशर होता है कि हमारे यहाँ भी बयान है तो हमारे यहाँ भी दुआ कर दे, तो वो एक अलग शेड्यूल बन जाता है। वो ज़ाहिर तंजीमी जिम्मेदारियाँ नहीं है, लेकिन एक ज़ाहिर के लोगों का प्यार है,
अखलाकी
हाँ अखलाक की जिम्मेदारी कह ले। अब तबीयत में भी था तो मुझे इतना भारी नहीं पड़ता, जो दूर से मुझे देख रहा होता है ना उसको लगता है कि कैसे हैंडल होता है, लेकिन एक बंदे का अगर लाइफ स्टाइल ही शुरू से ऐसा रहा है तो मेरे साथ तो अब ऐसा हो जाता है कि अगर मुझे किसी एक दिन काम ना हो तो मैं ऐसा लगता है कि बीमार हो गया हूँ या कोई कहाँ खाली फील होता है, तो कोई ना कोई काम मैं पकड़ लेता हूँ। आपने देखा होगा आप ही की मेहरबानी से कि मदनी चैनल के लिए हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे जब तफसीर कुरान की, तो वो हमारी तफसीर कुरान जब ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने दूसरी शॉर्ट तफसीर कुरान शुरू कर दी, तो उसके लिए भी जो मैंने टाइम सोचा था। अच्छा, ये माशाल्लाह मुफ्ती कासिम साहब ने मुझे मशवरा दिया था, मैंने मुफ्ती साहब को एक बार अर्ज़ किया था कि मुफ्ती साहब मेरी रूटीन ये है कि मैं फजर पढ़ के सोता हूँ, लेकिन रात 1:30-2 बजे के बाद जो है ना थक भी चुका होता हूँ और कुछ करने को जी नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फजर का इंतजार में ये 2 घंटे कुछ काम करना चाहिए मुझे, तो और मैं बहुत ज़्यादा दिमागी काम नहीं कर सकता, अरे इंसान पूरे दिन का वो होता है। तो फिर मुफ्ती साहब ने 2-3 मशवरे दिए, उसमें उन्होंने फरमाया कि आप कोई डायरी लिखना शुरू कर दें, अपना अपना सफ़रनामा लिखें या कुछ ऐसा काम करें जो ज़्यादा
मुफीद हो लोगों
मुफीद
के
भी
लिए
हो
भी मुफीद।
और वो आपके लिए ज़्यादा तकलीफ दे भी ना हो ना, ज़्यादा प्रेशर वाला ना हो। तो अल्लाह की रहमत से ये क्रेडिट बिलोंग्स टू असद भाई एंड मदनी चैनल के, इन्होंने मुझे एक चांस दिया था आज से कुछ सालों पहले, तर्जुमाए कुरान जब कंजुल ईमान की रिकॉर्डिंग थी, तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि वॉइस पे भी अल्लाह मुझे खिदमत का मौका देगा, तो फिर ये काम किया तो मुझे इतना पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा यार ये वो जो 1:30-2 बजे वाली स्लॉट है ना रात की, ये मेरे इस काम में बड़ी अच्छी यूज़ होगी, तो मैं रात में यहाँ भी शुरू किया मदनी चैनल पर, फिर मैं अपने घर पर भी एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हम रात में काम करते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका बेनिफिट भी लोगों ने देखा,
अल्हम्दुलिल्लाह,
नो
फायदा उठा
डाउट।
रहे हैं।
पर्सनली मैंने तफसीर देख के नहीं पढ़ी
अच्छा
ड्यू टू सम रीजन,
जी
लेकिन सुन के मैंने सीखी है जितनी
माशाल्लाह
भी सीखी, और कई मेरे बयान, कई प्रोग्राम्स की जो तैयारी है, मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ नाजरीन के इससे फ़ायदा उठाएं। यानी कि सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट यूजेज कि आप कुरान की तफसीर सुन रहे हो। अब तो माशाल्लाह क्लिप्स भी हैं जो छोटे छोटे दो दो 3 मिनट के आते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा है शेड्यूल किया हुआ है उन्होंने, कभी रोज़ का एक क्लिप आ रहा है, रोज़ के 2 आ रहे हैं, तो अपनी रूटीन के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब्दुल अभी भी आपकी तो एक तंजीम से वाबस्तगी है, पर्सनल बिजनेस है, फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें मैटर करती हैं, और उससे फिर बंदा अपनी एज अ जनरल पब्लिक सोसाइटी में आप क्या देखते हैं, क्या मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सजेस्ट क्या करेंगे अवाम के लिए, जैसे इस वक्त जो हमारे
जी
नाजरीन की एक बड़ी तादाद है, जरा हर एक इतना मसरूफ हो, इतनी जिम्मेदारियां हो और इतना डाइवोर्स्ड हो, इट्स नॉट नेसेसरी।
असल में इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं।
अच्छा
बाज औकात इंसान एक ही वक्त में कई काम करता है और कोई काम भी पूरा नहीं कर पाता। वो
अच्छा
कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, तो
सही
ये भी नहीं होना चाहिए। पहले आपको ये एबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या आप एक वक्त में दो काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एबिलिटी आप चेक ना करें, आपके ऊपर का कोई बंदा चेक करे कि
अच्छा
भाई आपको पहले एक काम दे और आप वो काम प्रॉपर करें, पे देखे स्पेस है तो फिर दूसरा दे, और उन दोनों को अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो फिर तीसरा दे। इंसान खुद ही अगर 3-4 काम पकड़ ले और वो चेक ही ना कर पाए। मैं इस वजह से ब्लेस्ड रहा कि अगर ये तंजीमी जिम्मेदारियां मुझे मिली तो हमारे बड़ों ने, बिलखसूस निगरान शूरा ने, अमीर अहले सुन्नत ने, और हमारे जो हाजी शाह साहब निगरान पाक हैं, जाहिर उन्होंने चेक किया होगा ना कि भाई एक जिम्मेदारी दी और देखा कि यार अगर ये ठीक हो रही है तो एक और दे दी जाए। तो होना भी यही चाहिए कि मल्टीटास्किंग अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो इट्स अमेजिंग कि आप एक ही जिंदगी है और उसमें अगर बहुत सारे काम कर लेते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत सारे कामों के चक्कर में एक काम भी ठीक नहीं कर रहे तो वो आपको आपको डैमेज कर देगा। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत सारे काम करते हैं, हालांकि कमाल के लोग हैं, मगर शायद उन्हें मल्टी टास्किंग की एबिलिटी नहीं है, तो उनका रिजल्ट कोई उभर के सामने नहीं आता। अच्छा, वो इतनी मेहनत करते नजर आते हैं और हम 2-3 साल बाद उनको कहते हैं आपके क्रेडिट पर कोई बड़ा काम क्यों नहीं है, तो पता चला कि वो 4 काम कर रहे हैं और चारों में इतने मसरूफ है कि किसी एक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो जब तक आपके अंदर ये एबिलिटी ना हो तो मेरा ख्याल है मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसे मेंटोर से रابطہ करना चाहिए जो आपको चेक करे। अच्छा, इसका 2 पहलू हैं।
एक आम आदमी कैसे इसको, जैसे आपने तो एक तंजीम का सेटअप है ना, हमारे बड़े हैं,
ठीक है,
हायर की है, लेकिन फॉर अ कॉमन पर्सन उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे मेंटोर तलाश करे और वो किसके पास जाए?
लेकिन अक्सर लोग कोई जॉब कर रहे होते हैं तो
ठीक है
जॉब में कोई ना कोई तो बॉस होता है ना,
ऐसा
और हमने देखा है कि अच्छे जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, वो अपनी कंपनी के कुछ लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देते हैं, और वो इसीलिए देते हैं कि वो उनकी एबिलिटी को चेक कर लेते हैं कि ये कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता है। तो अब अगर एक तो वहां से काम आपको मिल जाता है, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी ऐसे समझदार आदमी को अपना, उसके साथ उठना बैठना शुरू करें कि जिनके अंदर समझदारी हो। मैंने आप ही के एक प्रोग्राम में एक बड़ा प्यारा आपने जुमला कहा था कि भाई किसी को तलाश करें और फिर उसकी माने भी, मतलब वो पता चला तलाश भी करते हैं और फिर वसवसों का शिकार भी रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ही इज अ कैपेबल, तो आप उससे बात करें कि यार मैं और काम करना चाहता हूँ, आप जरा मेरा स्कैन करें, रिपोर्ट होता है ना, तो वो आपसे चंद सवालात करके उम्मीद है कि आपको अच्छा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत सारा वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, वक्त होता भी है और कुछ कर भी नहीं रहे होते। देखे ना, कुछ लोग जो है वो एक वक्त में 2 जॉब्स कर कर या एक वक्त में 2-3 काम करके अपनी फैमिली को भी खड़ा कर लेते हैं। वो जुमला बड़ा अच्छा किताबों में पढ़ा था कि माल उसी का बिकता है, सौदा उसी का बिकता है जिसका दर्जन 12-13 का होता है। तो दर्जन 13 का बना लें, थोड़ा सा अपना वक्त निकालें और कुछ और स्किल्स इन्हेंस करें। जो आपने कहा ना मल्टी टास्किंग के लिए आपकी स्किल्स भी बढ़नी चाहिए, कुछ लैंग्वेजेस सीख लें, कुछ कोर्सेस कर लें, कुछ ट्रैवल करें, तो उससे आपको बहुत चीज़ें जो ना आस पड़ोस की सीखने को मिलेंगी, सफर में सीखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा।
क्या ये सजेस्ट करेंगे कि जैसे कोई एक काम आप प्रॉपर करें वो आपका मेजर काम है?
बिल्कुल
फॉर
सर,
एग्जांपल अगर मैं 10 से 12 घंटे से ज्यादा काम करना भी नहीं चाहिए, सजेस्टेड जो टाइम है वो 10 to 11 आवर्स,
बिल्कुल सर,
तो 7-8 घंटे आपने किसी एक चीज को, खा वो आपका बिजनेस है, खा आपकी एजुकेशन है, कोई एक आपने टारगेट बढ़ा किया उसके साथ आप ट्राई करें।
बिल्कुल,
अब सारी ही चीजों को गुड़मुट करके मल्टीटास्किंग में जाएंगे तो
बहुत
क्या
अच्छी
जो
बात,
जो आपने
बहुत अच्छी बात की आपने कि आपके प्रोफाइल पर, आपके क्रेडिट पर कोई एक काम तो हो ना कि जिसको आपने शुरू किया और यहां तक पहुंचा दिया,
वो बेसिक
वो बेसिक है, अब उसके साथ आप करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी असद भाई मैंने सीखी कि किसी भी एक काम को जब आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो बाकी काम को कम वक्त में आप उतना ही अच्छा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो तजुर्बा आपको काम आता है, मैनेजमेंट स्किल बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखना आ जाता है, तो फिर आप नए काम में जीरो से शुरू नहीं होते, वो बहुत अच्छा हो जाता है।
चेक कैसे करें अब्दुल अभी भाई? देखिए, जब हम खुद कोई काम कर रहे होते हैं तो तो चूंकि मैं कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छा ही कर रहा हूँ, और अपने कामों को दो कर रहा हूँ या तीन कर रहा हूँ या जितने भी हैं, तो क्या ऐसे बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने आप से करूँ कि मैं अपने आप को तो क्रॉस चेक करूँ, क्योंकि हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होगा कि उसको कोई ऐसा मेंटोर और ऐसा समझदार आदमी मिल भी जाए। तो क्या एक पर्सनल चेकलिस्ट अगर आप करते हो तो तरगीब के लिए वो भी शेयर हो सकती है, या अगर कोई शख्स करना चाहे तो कैसे अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें?
देखिए, वाकई सच्ची बात तो ये है कि हमें तो एक ऐसी दावत इस्लामी तहरीक मिल गई है कि हम चेक भी हो रहे होते हैं, हमारे मशवरे भी हो रहे होते हैं, हमारी तरबियत भी हो रही होती है, हम एवेलुएट भी हो रहे होते हैं कि भाई ऊपर भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अच्छा, नहीं जा रहे तो समझाया भी प्यार से जा रहा है, डांटा भी नहीं जा रहा, जलील भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, वो चाह भी रहे हैं कि हम बढ़ जाएं, ये बड़ा फ़र्क है। यहाँ लोग चाहते नहीं हम बढ़ जाएं,
सही,
लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं ना, वो सारे चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी में इन्हेंसमेंट आए। तो फिर तो आपके लिए कितना अच्छा मैदान हो जाएगा,
एनवायरमेंट
लेग पुलिंग वाला तो मामला ही नहीं है। तो ये कमाल है दावत इस्लामी का कि एक, मैं एक जुमला याद आ गया, आप जानते हैं उनको, हमारे साउथ अफ्रीका के जो निगरान है असलम भाई, असलम फैजू भाई, आज से बहुत पुरानी बात है, शायद 10-15-20 साल पहले उन्होंने कमाल की बात कही थी मशवरे में। कहते हैं दूसरी कंपनीज के जब सीईओ या चेकिंग करने वाले या क्वालिटी कंट्रोल करने वाले दौरा करते हैं ना किसी फैक्ट्री का, तो सारे लोग डरे हुए होते हैं और चाहते हैं कि जल्दी चले जाएं, ठीक है, और ये वापस ना आए। अब ये 2-4 साल बाद ही आए। बोले दावत इस्लामी वाहिद कंपनी है, उन्होंने मिसाल के तौर पर समझाया कि जिसके निगरान जब हमारे मुल्क आते हैं तो पहले तो हम उनकी मिन्नतें करते हैं, आ जाएं, हमें बताएं हमारी शॉर्ट कमिंग क्या है। अच्छा, जब वो समझाते हैं और वापस जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं कि फिर कब आएंगे। तो ऐसी कंपनी जिसमें हर बंदा सुधरना चाहता हो, जिसमें हर बंदा चाहता हो कि कोई आए और मुझे चेक करे और मुझे समझाए मेरी कमी क्या है और मुझे बढ़ाए, तो आप सोचे इस एनवायरमेंट में आगे बढ़ना, नरिश होना कितना आसान हो जाता है। तो ये
जबरदस्त,
तो सच्ची बात है कि हमें तो
ब्लेस्ड है,
बहुत
वी आर
ब्लेस्ड है, हम
ब्लेस्ड।
बहुत, दावत इस्लामी कमाल है हमारे लिए। जो लोगों को जो दूर है शायद उनको ये नेमत नहीं पता कि क्या है। हाँ, लेकिन अब अगर हम आम लोगों के लिए बात करें तो बात वही है कि नतीज से गौर करें ना, कि दो चीजें होती हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूं लेकिन मेरे आसपास वाले खुश भी हैं कि नहीं। कुछ लोग किसी न किसी वजह से समहाउ तरक्की तो कर जाते हैं, मगर इतने लोगों को तोड़ चुके होते हैं, किसी की टांग तोड़ी, किसी का पैर तोड़ा, किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी को बाहर निकाला और आप पहुंच गए ऊपर, तो ये पायदार तरक्की नहीं है। सारे लोग आपसे नाराज हैं और अल्लाह ना करे जब आप फिर नीचे आए तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं हो। तरक्की ये है कि आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी स्टेज पर पहुंचे तो आप ये देखें कि आपके साथ 4 लोग और भी तरक्की किया कि नहीं, यानी मेरे साथ जिन्होंने काम शुरू किया था वो भी ऊपर गए कि नहीं, यानी मेरे अगर 10 ग्रेड बढ़े तो उनके 5 बढ़े कि नहीं, और मुझे लग रहा है मैं अकेला 10वें में पहुंच गया, नीचे वाले साथी सारे साथ छोड़ गए, तो दिस इज नॉट तरक्की, ये आपको बर्बाद कर देगी और फिर आप किसी और मैदान में तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमने तो अमीर अहले सुन्नत से, दावत इस्लामी से यही सीखा अपने बड़ों से कि आप दूसरों को आगे बढ़ाएं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
बेशक
और
बेशक,
यही फॉर्मूला अगर कंपनीज में हो जाए, यही फॉर्मूला फैमिली में हो जाए, वालिद बाज़ औक़ात बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे होते, भाई भाई को इनकरेज नहीं कर रहा होता, वो चाह रहा होता है मैं ही तरक्की कर जाऊं, वो तरक्की नहीं होती है। जब पूरी फैमिली ग्रो करती है ना तो आप देखिए सब खुशहाल हो जाते हैं और सबको बरकतें
बहुत
मिलती हैं।
खूबसूरत,
मैंने
बहुत
तो यहाँ तक
खूबसूरत।
देखा असद भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी, हमारा भी अंदाज है बिजनेस में, हमने अपने वालिद साहब से सीखा था कि अपने एम्प्लॉयज को भी तरक्की दो,
अच्छा,
यानी अपने एम्प्लॉयज की तरक्की में, उनकी सैलरी में, उनकी कमाई में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पर कोई अच्छा कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास जॉब कर रहा है और उसको अच्छी ऑफर आ गई, उसको जाने दें, वो चाहता है मैं अपना बिजनेस करूं, उसको थोड़ा और सपोर्ट,
खुशी से जाने दें,
खुशी से जाने दें उसको, वो ना कहें कि हम तुम कैसे जा रहे हो। अच्छा, फिर अगर पॉसिबल है तो अपनी कंपनी में अपने कुछ अच्छे एम्प्लॉयज को पार्टनर बना लें। तो अब देखिए,
बड़ी बात है,
मैंने एक चीज सीखी है,
इसके लिए दिल चाहिए।
हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, हमारी हमारे ट्रेवल में ऐसा हम करते हैं, मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं, इम्प्लॉय इम्प्लॉय होता है, पार्टनर पार्टनर होता है।
ऐसे
जब इम्प्लॉय को ये पता चल गया ना कि इस कंपनी की तरक्की में मेरा भी भला है, तो अब आप सोए हुए होंगे, वो काम कर रहा
वो
होगा,
आपको जगा के
वो
रखेगा,
जगह कर
भाई ये हो रहा
वही
है।
करें। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, जैसे हम जैसे लोग हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं, चले ये एक फार्मूला काम आएगा कि जो लोग चाहते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से इंजॉय करें, अपने बिजनेस तो है लेकिन वो चाहते हैं ट्रेवल भी करें, लेकिन वो ट्रेवल नहीं कर पाते, वो
इजी
फैमिली
टाइम
को
हो
टाइम,
हमारे
वो
पास,
टाइम नहीं लेगा, तो कहते हैं हमें बैठना पड़ता है बिजनेस पे। तो उसकी वजह ये होती है कि उनको, बाज लोगों को अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा नहीं होता, और जब अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा नहीं तो उनको हर वक्त खुद प्रेजेंस, वो खबर शटर भी मैं खोलूं और बंद भी मैं करूं। मुझे एक बात बताएं, फिर आपने जो पैसे कमाए उसको एंजॉय कब करेंगे, आप ट्रैवल कब करेंगे, मक्के मदीने कब जाएंगे, तो ट्रैवल ही नहीं करते। तो मेरे साथ कई बिजनेसमैन बैठे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अच्छे एम्प्लॉयज रखें, अच्छा इंसेंटिव दें, उन पे भरोसा करें। 100 की जगह हो सकता है आप 70 कमाएंगे, मगर वो 30 आपने नहीं कमाए ना, उस 30 रुपए में आपने अपनी जिंदगी ले ली अपने हाथ में। अब आप इंजॉय करें, अब आप फोन पर हैं, अब आप व्हाट्सएप पर हैं, और सारी दुनिया ट्रैवल करें, बिजनेस आपके लोग करेंगे। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं कितने कितने दिन ट्रैवल करता हूँ, और मैं जाता भी हूँ ऑफिस में तो आधा एक घंटा चाय पीने जाता हूँ, लेकिन सारे काम अल्लाह की रहमत से हो रहे हैं। अच्छे लोग अल्लाह की बड़ी रहमत है।
आपके साथ बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है, और उसमें से एक ये चीज है, और इसी वजह से सारे बंदा ज्यादा काम भी कर सकते हैं। वरना किसी ने एक मिसाल दी थी और बड़ी अच्छी थी, जो शख्स किसी पे भरोसा नहीं कर पाता और सारे काम खुद ही करने, तो ऐसा है कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया और खुद चौकीदार बन के बैठ गया।
बिल्कुल है, तो सही मिसाल थी
आपने। अब उसने महल को एंजॉय कब करना भाई, तुम खुद चौकीदार।
कमाल की एग्जांपल, बिल्कुल ऐसा हजारों लोगों की जिंदगी में। मैं नाम नहीं लेता शहर का, वरना लोग पहचान जाएंगे। हमारे एक दोस्त है, उनका जनरल स्टोर है। अच्छा असद भाई माशाल्लाह करोड़पति है, और मैं जब भी जाऊँ ना रात को 2-3 बजे भी, तो उनके जनरल स्टोर पर बैठे हूँ। अच्छा मुझे बुलाते ही रात को 2 बजे थे कि आप अगर कभी आए ना चाहे तो। मैं घर कब जाते हो? कहते बस 4 बजे घर जाते हैं, और सुबह से एक भाई आ जाता है। फिर मैंने एक बार इनको बुला लिया, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। बाल भी सफेद होने लग गए थे। मैंने कहा ट्रैवल कितना किया? कहते ट्रैवल कहाँ से करें, काम
नहीं है,
काम ही इतना है। अच्छा बच्चों इतवार वाले दिन भी काम है, अब ये स्टोर वाले काम जो होते ना। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इसलिए इसलिए पैसे कमाए थे तो बोले पॉसिबल कैसे है। फिर मैंने उनको अपनी मिसालें दी, मैंने कहा आप थोड़ा सा प्लान करें। अच्छा अब तो ये बातें तो मैं उस वक्त करता था जब ये सिस्टम कम आए,
टेक्नोलॉजी नहीं थी,
टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। अच्छा अगर इसको, अगर किसी को लग रहा होगा ये अब्दुल हबीब भाई का फार्मूला, ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे बड़े बिजनेस, क्या मल्टीनेशनल कंपनियों का सीईओ हर ब्रांच में जाके खड़ा होता है? 500 आउटलेट्स खुल गए फूड जो है वो चेन्स के, तो कौन मालिक कौन है पता ही नहीं है, सारा सिस्टम चला रहा है। तो यार इस पर खर्चा करें और अपने आप को इजी करें, और फिर वो चौकीदारी से निकले और उस महल के अंदर जाएं जो अल्लाह ने नेमत दी है,
इसको एंजॉय करें। पंजाबी में एक जुमला है, कम करियाना ना किते आना ना किते जाना, यानी किराने की अगर आपने दुकान बना ली है तो ना कहीं आना ना जाना।
अब किराने की दुकान भी सिस्टम बेस की जा सकती है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते, वो जरूरी है भाई, वो बंद कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अच्छे अफराद तलाश कर लिए जाए, किसी को उसी का पार्टनर बना दिया जाए। अच्छा जब आप, अच्छा इसमें दो फायदे हैं, सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं होता, अगर आप बिजनेस एनहेंस करना चाहते हैं, एक मल्टीटास्किंग वाली बात आ गई, आप चाहते हैं कि आपके 3 कारोबार हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप 3 काम दीनी काम कर लें या दुनियावी काम कर लें, तो उसके लिए अपनी प्रेजेंस कम और टेक्नोलॉजी और सिस्टम और भरोसा ज्यादा रखना पड़ेगा।
माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, उम्मीद है कि बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। ये तो आपने एम्प्लॉइज की बात की
जी,
हम तो यहाँ ये देखते हैं कि लोग अपने बच्चों पर और औलाद पर वो भरोसा नहीं कर पाते, हालांकि वो तो आपकी फाउंडेशन है, वो तो आपकी अपनी बुनियाद है। अच्छा अब जब आप अपने औलाद पर, अपने घर वालों पर, बहन भाइयों पर अब वैसा एतमाद नहीं करेंगे, तो फिर घर का माहौल जो है वो वैसा नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है यही एक एक वजह वो सुमे से ये भी है कि फिर डिप्रेशन है, फिर स्ट्रेस है, फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ
बच्चे और भागी भी बनते हैं।
अच्छा
बच्चे बागी बन जाते हैं जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि उनके वालिदैन उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। अच्छा उनको पता होता है कि मेरे अबू की वेल्थ अच्छी है, वो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे कोई कारोबार करवा सकते हैं, मगर वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। अच्छा वो एक ही जेब ना कहते हैं मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। ये प्लीज़ सीख लीजिए कि आप अगर अपने, और वही आप वाली बात, मेरी फाउंडेशन है, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे के साथी जब बनेंगे, जब मैंने उनको जवानी में भरोसा किया होगा, ठीक है ना, उनको आगे बढ़ने दिया होगा, यकीनन नज़र रखें, मगर उनको फैसला करने दें, उनको आप कुछ इजाजत दें करने की, और कहें मैं खड़ा हूं बेटा कोई काम हो तो मुझे बताना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा बहुत मेरे अंदर हौसला या आप कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि 14-15 साल की उम्र से मेरे वाले साहब ने एक तो मुझे कारोबार पे तो बिठाया। चले मैं ये नहीं कहता हर बंदा इतनी जल्दी कारोबार पे आ सकता, लेकिन उन्होंने मुझे दीनी कामों की भी इजाजत दी, सफर करने की भी इजाजत दी कि ठीक है आप काफलों में जाया करें, इस्लामी भाइयों के साथ जाएं। मैंने बहुत अकेले ट्रैवल किया है, मैंने पाकिस्तान के कई शहरों का सफर जो है 15-17 साल की उम्र में कर लिया था। तो आप जब आपने आपको भी पता है जब आप ट्रैवल करते हैं,
फर्स्ट ट्रैवल 15 साल में था मुल्तान से कराची जब पढ़ने आया।
आप सोचे ना, ट्रैवल जब बंदा करता है तो उसके जो जहन के तरीचे खुलते हैं। अच्छा उसमें बड़ी मुश्किलें भी आई, मेरे पैसे भी खो गए, मैंने खुद टिकटें कराई, मैंने खुद जनाब ट्रेन मिस हो गई, लेट हो गया, तो ये सब चीजें जिंदगी में सिखाती हैं। हर तकलीफ आपको एक नई एजुकेशन देती है, तो इसको करने दें, बच्चों को एक्सपीरियंस इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा
इंशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह अब आपके बच्चे बड़े हो गए, बल्कि बच्चों के भी बच्चे हो गए, यू आर दादा एज वेल एज नाना।
मैं नाना नहीं हूँ अभी तक, लेकिन
अच्छा दादा है
जी।
ये एक बड़ा टॉपिक है, मैं एक अपने इस्लाम भाई ही है तो उनके साथ ऐसी सिटिंग थी, तो अच्छे हैं खाते पीते हैं, तो वो कहने लगे कि मैं वेल ऑफ हूँ, मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मेरे पास जो है माल अच्छा है, और उनके जो दोस्त हैं वो भी इसी तरह के हैं, जाहिर है कि वो ओ लेवल्स में पढ़ रहे हैं और उनके जो कोलीग्स हैं वो अब तकाजा करते हैं कि हम बाहर चलें, कॉफ़ी शॉप पे जाना है, कराची की फलां जगह पे जाना है। अच्छा है वो दीनी मॉल से वाबस्ता। देर वॉज़ अ फियर कि मैं क्या करूँ, सोसाइटी में अपनी औलाद को मैं कैसे एडजस्ट करूँ। अच्छा अब एक तरफ ये पहलू भी है कि भाई दोस्त बच्चे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे। तो ये एक मजहबी लोगों के साथ भी है और जो ख़ास मजहबी तबका नहीं कहलाता, लेकिन एक माशरे का बड़ा हिस्सा है जो इस फियर का शिकार है। सोसाइटी में रहना भी है, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देना है, लेकिन सोसाइटी की जो नेगेटिव्स हैं उनसे बचाना भी है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? और मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन में एक तादाद होगी जो इस कशमकश में होंगे, बच्चे 12 13 14 साल के हो गए, तो सोसाइटी का पॉजिटिव पार्ट कैसे बनाए और इस फियर से कैसे निकले?
मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शायद ये ऐसा मसला बन गया है कि हर वालिद का ये प्रॉब्लम है। और मेरा तो इसमें मानना है कि लोग कहते हैं कि लड़की जो है या बेटी हो जाए तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मेरे हिसाब से लड़कों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब बेटे हो जाते हैं ना, क्योंकि बेटे को आप घर से बाहर जाने से रोक नहीं सकते। बेटी तो नॉर्मली अगर अच्छे खानदान से तो घर में ज्यादा वक्त गुजारती है, और शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन बेटे वो होते हैं कि वो शादी के बाद भी आपकी जिम्मेदारी रहते हैं अगर वो आपके साथ ही रह रहे हैं। तो जाहिर है अगर वो कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, अल्लाह ना करे किसी गलत सोबत में पड़ गया, तो वालिद को भी लोग बात करते हैं। अब इसमें तो एक चीज तो सबसे बड़ी बात है कि दुआ। दूसरा एक और बात यह कि हम अपने बच्चों को खुद टाइम दें। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम बच्चों के दोस्त हम नहीं बनते तो बाज़ोकात बुरे दोस्त बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अपने बच्चों को साथ ले जाएं। जैसे अभी आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गए ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा। आप किसी लंबे, अगर गाड़ी नहीं है तो बस में, कहीं भी ट्रेन में आप उनके साथ इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं।
यानी आप रूटीन के टाइम से हटकर कुछ टाइम स्पेंड करें,
उनको लगे कि ये टाइम मेरा है, ठीक है, और उसमें उनसे खुल के बात करें। अच्छा उनके दोस्तों से मुतालिक भी बात करें, दोस्त बनाने से मना नहीं कर सकते। अच्छा उसमें ये भी हो सकता है कि
ब्रायलर वो जो एक मम्मी डैडी टाइप पे बन जाती है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाता।
हाँ, इस पे पता है क्या करना चाहिए, मैंने एक दो बार ट्राई किया था और एक दो और दोस्तों ने भी किया कि हम उनके दोस्तों में अपने एक दो ऐसे यंगस्टर इस्लाम भाई ऐड करवा दें कि जो अच्छे माहौल के हों, नमाजी हों, तो टू इन वन फायदा हो जाता है। एक तो हमें पता चलता रहता है वो कहाँ जा रहे हैं, और वो जो इस्लामी भाई हो उसकी तरकीब ऐसी हो कि वो जरा घुलने मिलने वाले हों, उनकी एज के हों। माशाल्लाह ऐसे तलबा भी होते हैं जामियतुल मदीना के, तो हम उनसे बातचीत करके थोड़ा रिक्वेस्ट करके इनकी दोस्ती कराएं, एक दो बार दोनों को साथ खाने पर ले जाएं ताकि ये करीब आ जाए। अच्छा वो फ़ोन करता रहे कि चलें इज्तिमा में आ जाएं। तो एक तो अल्लाह करे कि हमें दावत इस्लामी के माहौल के दोस्त मिल जाएं। बचपन से मुझे ऐसा मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमारे लिए अच्छा हो गया। लेकिन आज के दौर में अपने बच्चों के लिए फिक्र तो करनी ही पड़ेगी, वरना होता ये कि बिल्कुल हम भूल जाते हैं और फिर कोई बड़ा धमाका होता है तो फिर ख्याल आता है। तो नज़र भी रखें, प्यार भी करें, जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती करें, इनकी एक्टिविटी पर भी नज़र रखें। रोक तो नहीं सकेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यही है कि आप उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अब अल्लाह पाक दिलों को बदलने वाला है, कभी बड़ी रात के इज्तिमा में है, आप काफिले में अपने साथ ले गए, और फिर अल्लाह से दुआ भी करें, मौला मैं ले आया हूँ, दिल तूने बदलना है, फिर मेरा रब बड़ा करीम है।
हमारे बड़े हमारी फिक्र करते हैं। अमीर अली सुन्नत को एक दफ़ा मैंने शेयर किया कि मैं काफिले में जा रहा हूँ, उन्होंने फरमाया आपके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। जी अगली दफ़ा लेके गया, फिर कारकर्दगी दी,
बहुत अच्छा।
तो फरमाया एक को लेके गए बकिया। तो ये जो आपने बात कही कि, और अच्छा उसके बाद से अब ये जहन है, और अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब के लिए भी अर्ज़ करता हूँ कि जब भी मेरा काफिले में सफ़र है तो तीनों में से एक जो है वो साथ होगा, अच्छा वो नंबर वाइज होंगे। और अब माशाल्लाह उनके अंदर भी एक शौक है, खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब मैंने जाना है, तो एक ट्रैवल भी है, एक आउटिंग भी है, लेकिन साथ में जो है वो काफिला भी है। इसमें किसी ने एक और भी अच्छा मशवरा था, अगर आप नाज़रीन ट्राई करना चाहें तो ये ज़रूर करें। आपका बच्चा जिस फैमिली के बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है तो उस फैमिली की थोड़ी सी मालूमात कर लें। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं तो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्यों? क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी का जो परसेप्शन जो क्रिएट होना है वो फैमिली बैकग्राउंड से होना है। अगर पढ़ी लिखी सुलझी हुई समझदार दीनी जहन है उसका, नाजायज़ जायज़ हराम हराल का थोड़ा बहुत लिहाज वो रखते हैं, तो फिर ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को किसी के साथ इंट्रैक्शन करने दें। और अगर जहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल आउट है, तो फिर जाहिर है कि नहीं होना चाहिए। बट इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि अब्दुल हबीब ने फरमाया कि नज़र रखें, ये भी वक्त देने की बात है। बच्चों के दोस्तों की फैमिली के बारे में मालूमात तभी होंगी ना जब हम इंटरेस्ट लेंगे और टाइम देंगे और मालूमात हासिल करेंगे, वरना आजमाइश हो जाएगी। तो ना इस तरह बहुत स्ट्रिक्ट हों और ना ही दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। अल्लाह पाक हमारी नस्लों को महफूज भी फरमाए और अच्छा हम मुस्तकबिल देखने में कामयाब हों। अब्दुल हबीब भाई, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लेवल पर, ज़ाहिर है जिसका जो मनसब है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। तो मैं आम सोसाइटी को एड्रेस करना चाहूँगा कि अपने फैसलों में हमें किन चीज़ों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी की एक और मैं ताबीर करूँ एक जुमले में, तो शायद आपका अक्सर वक्त डिसीजन मेकिंग में, यानी आपसे कोई मशवरा कर रहा है, आपको डिसीजन लेना है, आपके पास कारकर्दगी आई, आपने डिसीजन लेना है। बिजनेस इज ऑल्सो ऑल अबाउट द डिसीजंस, एवरी डे आप कुछ ना कुछ फैसला कर रहे हैं, तो जैसा बंदा वैसे उसकी जो है वो डिसीजन मेकिंग है। तो एक तो ओवरऑल अपने परसेप्शन पहले शेयर करें, मैं चाहूँगा कि आप माशरे को, अफराद को, लोगों को कैसा पाते हैं इस फील्ड में, क्या अच्छा पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं या क्या?
असल में अब बहुत बड़ी तादाद तो वो है जो डिसीजन में बहुत जल्दी करती है। अच्छा, ये मिस्टेक्स हमने भी की। सच्ची बात ये है कि वक्त सिखाता है, तजर्बात सिखाते हैं, और बंदा भी वही कामयाब है जो तजर्बात से सीखे, अपने आप को तब्दील करे। माशाल्लाह, वही दोबारा वही बात करूंगा कि दावत इस्लामी चूंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो हमें हर पहलू पर तरबियत कर रहा होता है। तो चूंकि हम जब ज़ेली निगरान थे या हम जब छोटी जिम्मेदारी पर थे, तब से तरबियत हो रही है, तो बहुत चीज़ें समझ आ गई कि हर चीज़ वैसी होती नहीं जैसी दिखती है।
सही,
वन साइड स्टोरी सुन के फैसला, डिसीजन ले लेना, माइंड बना लेना किसी के बारे में, ये बाज़ औक़ात बहुत बड़ा नुकसान करवाता है। और जब दूसरी साइड सामने आती है तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार मैं तो क्या सोच बैठा था। अच्छा, वो नुकसान भी हो चुका, ठीक है ना, फैसला तो आप कर चुके, या आपने किसी को फायर कर दिया, या किसी को हायर कर दिया, या किसी से रिश्ता कर लिया, या किसी से रिश्ता तोड़ दिया, या कोई माल खरीद लिया, या कोई माल बेच दिया। आप हर डिसीजन, आप बहुत अच्छी बात की कि हम हर कदम पर कुछ ना कुछ फैसला कर रहे
बिल्कुल
होते हैं,
ऐसे।
ठीक है ना। अब उस फैसले में हमने जो पहली बार चीज नजर आई और हमने फैसला कर लिया, इतनी जल्दबाजी, इतना अच्छा, फिर माइंड बना लिया। अब तो इतना तजर्बा हो गया है चोटे खा खा के कि यार इसकी दूसरी स्टोरी पहले मालूम, इसकी दूसरा रुख क्या है। अच्छा, दूसरा रुख अगला कहेगा है ही नहीं कोई दूसरा रुख, उसको कहें बिल्कुल ठीक है, उसको ना कहें जो हमारे पास पॉजिटिव लेकर आए ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं बताए।
सही है,
आप अपनी रिसोर्सेज से, अपनी समझ से, अल्लाह ने आपको होशियारी दी, ट्राई करें। यानी अब तो अकल में कहते हैं ना, चोर चोर चोरी कैसे करेगा, चोर की नजर से देखो।
ऐसा ही
तो आपको पहले गौर करना होगा कि इसके और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो माशाल्लाह, मैंने निगरानी शुरू से सीखा है कि जब किसी एक मशवरे में कोई बात हो रही है
सही है।
और सारे पॉजिटिव बयान कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो मैंने देखा आप ब्रेक ले लेते हैं।
अच्छा,
आप कहते हैं यार या तो नमाज का ब्रेक आ जाए या कल बात करेंगे,
सही
क्योंकि
है,
इस वक्त हर बंदा एक ही तरफ सोच रहा है,
मैंने माइंड पैटर्न वही बन
वह
गया।
सबका वही बन गया है। अगर तो एक ऐसी महफिल है या ऐसा मशवरा है जिसमें तीन लोग उसके मुखालिफ हैं और तीन लोग उसके पॉजिटिव हैं, तो फिर तो आप बहुत मजेदार मजलिस में मौजूद है कि आपको दोनों एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है, मिसाल देता हूँ, इसको मैं दुनिया भी लिया, हमारे
जी जी
दावत सब कहेंगे यार दावत इस्लामी हमें तो नहीं मिल रही। आप कहीं चाय के होटल पर बैठे हैं, ठीक है, और चार दोस्तों ने कहा कि यार ये कारोबार शुरू करना चाहिए,
सही है,
या यार फलां जगह पर ट्रेवल करना चाहिए, या फलां काम शुरू करना चाहिए, और आपको लग रहा है चारों इसके फजाइल बयान कर रहे हैं और आपका जहन भी उसकी तरफ जा रहा है ना, तो आज फैसला ना करें।
बहुत बहुत
आपका इंशाल्लाह इसको कल
बहुत
सोच लेते हैं,
बढ़िया।
एक दिन का गैप दें, कुछ घंटों का गैप दें, क्योंकि अब दिमाग सिर्फ पॉजिटिव सोच रहा है और अल्लाह ने हमारे दिमाग में सलाहियत दी है कि हम जिस तरफ सोचे हमें वही आइडियाज आते हैं। यानी अगर आज आप फैसला कर लें कि हमने घरों जाना है, तो आप घरों की फजाइल बयान करो। मैं कहूंगा नहीं वापस कराची जाना, तो मैं आपको इतने फजाइल बयान करूंगा कि नहीं हजरत वापस जाना बहुत जरूरी है और कराची शहर की बात ही कुछ और है। तो ये हमारे माइंड की बात
माइंड
होती है।
पैटर्न,
तो फैसला जो है ना, वो बाज़ औक़ात बहुत बड़ा भी फैसला होता है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हम रिश्ता करते हैं, अपने बच्चों का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, और आप देखें जब रिश्ता खराब जगह पर हो जाता है तो जो तकलीफ है, मैं कहता हूँ लाइफ खत्म हो
ऐसा
जाती है।
ऐसा ही।
आप इस फैसले में क्यों जल्दी करते हैं भाई? ऐसा तो नहीं कि कोई, अच्छा वो कहते हैं खत्म, कहीं रिश्ता और चले जाएगा। अरे भाई, अगर आपके नसीब में होगा तो ये रिश्ता कहीं और नहीं जाएगा।
ऐसा
लेकिन
ही,
आप प्लीज प्लस माइनस चेक करें, थोड़े लोगों से मालूम करें, आस पड़ोस के लोगों से मालूम करें। अच्छा, ऐसी बाजों का आंखों पे पट्टी आ जाती है कि बंदा कहता है बस मुझे कुछ नहीं सुन।
इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली गुफ्तगू जो है वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर कुछ सीखा है तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और अल्लाह पाक हम सबको सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े मुबल्लिग हैं या बड़े नाथान हैं?
मैं नाथ ही पढ़ता था जब छोटा
अच्छा,
था, जब मैं दावत इस्लामी के माहौल में जब बहुत छोटा था, अबू के साथ जाता था, तो अमीर अहले सुन्नत भी मुझे नात पढ़ाते थे और मैं महफिलों में नात पढ़ता था।
क्या ऐसी दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं कि आप समझते हैं कि यार ये जो ना माशरे के अंदर नहीं होनी चाहिए?
देखिए, वो कहते हैं ना, पहले तो लो बाद में बोलो। बोलते वक्त ही आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपकी बात सामने वालों को तकलीफ तो नहीं देगी, उनको उनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, बात में ठहराव होना चाहिए। कुछ लोग बड़े आमियाना अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, बड़े गंदी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आप जज्बाती हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, वो जवाब आप ही को बाद में शर्मिंदा करता है कि यार ये मैंने कह दिया, इतने पुराने दोस्त को कह दिया। जब से ये ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई हैं, अब तो बंदा बस देख रहा हो तो उसके बाद ऐसा जी चाहता अभी बटन दबा दूँ, अभी शॉप कर लूँ, अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, कल ले लेंगे, अच्छा लग गया ना उसको, आप स्क्रीन शॉट लेके रख लें, आप ज़रा मशवरा कर लें किसी से, ठीक है ना, कि ये मैं खरीदूँ कि ना खरीदूँ।
وجميل سيدنا النبي وجميل